जब से मैंने यानी बोलना और बात करना सीखा है और सुनना मुझे याद है, तो उस वक्त से मेरे कानों में ये बात पड़ रही थी कि तुम बड़े होकर सर्जन बनोगे। तो इसलिए ये जो सर्जन बनना और ये जो मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, ये तो बुनियादी तौर पर ऐसे जैसे मेरी घुटी में था। और बहुत ही सहूलत के साथ मैं डॉक्टर बन गया 1985 में। और MBBS करने के बाद तो मैंने हाउस जॉब की। उस ज़माने में ये एक ज़रूरी होता था कि या तो आप फौज में नौकरी करें एक साल, या आप किसी देहाती इलाके में नौकरी करें। तो मैंने इसमें से वो देहाती इलाके को चुना और यहाँ चिश्तिया के करीब एक गांव था, शहर फरीद, वहाँ जाकर मैंने एक साल वहाँ काम किया। वो जो एक साल मैंने देहात में काम किया, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत शानदार तजुर्बा हुआ। और मैं बिल्कुल यंग सा डॉक्टर था और इस मेडिकल कॉलेज से निकल के आया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पेरिफेरल हॉस्पिटल में क्या मसाइल होते हैं। बहरहाल वो हमें एक साल वहाँ मैंने काम किया। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने, चूँकि सर्जरी में मैंने काम किया था, तो मेरा शौक था कि मैं जाके छोटी मोटी वहाँ ऑपरेशन जो मेरे लेवल के थे वो मैं शुरू कर सकूँ। तो मैंने वहाँ डिस्पेंसर से पूछा कि भाई वो यहाँ ऑपरेशन थिएटर कहाँ है। उसने कहा जी ऑपरेशन थिएटर मैं आपको देख के बताता हूँ। तो मुझे कमरे में ले गया, वहाँ एक बकरी बंधी हुई थी और एक साइकिल खड़ा था और कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैं कहा ये लकड़ियाँ किस बात की? कहने लगा ये बस ये मैं जलाने के लिए लेके जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ स्टोर कर देता हूँ। तो ये ऑपरेशन थिएटर था वहाँ। फिर मैंने कहा यहाँ कुछ औजार वगैरह होंगे? उन्होंने कहा हाँ, ये 1971 में अमेरिकन एड से कुछ औजार आए थे, वो आपको दिखाता हूँ। उसने एक पुराना सा संदूक खोला, उसमें कुछ औजार पड़े हुए थे। तो वो लेके मैंने उनको देखा वेखा, कुछ तो बहुत ही क्रूड और पुराने से थे, कुछ मैं खुद खरीद के लाया और हमने वहाँ ऑपरेशन शुरू किया। वहाँ लोगों को ऑपरेशन पे कायल करना और एक ऐसा आदमी ऑपरेशन करे जो बिल्कुल नया सा हो, यंग हो, मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 26 साल थी। तो एक पेशेंट आया तो वो कोई तैयारी ना हो, मैं और हर एक से कहूँ कि भाई आइए आपका ये जैसे हर्निया और स्टोन ब्लैडर, वो जो मैं कर सकता था उस लेवल पर, तो कोई तैयारी ना हो क्योंकि वहाँ कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। तो एक दफ़ा अलबत्ता ऐसा हुआ कि एक बुज़ुर्ग आए तो उन्हें बवासीर की ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, इतनी कि जब वो चल के आए तो पूरी खून की एक धार बह रही थी जो मेरे ऑफिस में आया, और बहुत उनकी शदीद हालत थी। क्योंकि वो बहुत एमरजेंसी में थे लिहाजा कायल करना आसान हो गया। मैंने कहा कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा जी फिर कर दें। एनेस्थी बेहोशी वाले डॉक्टर कोई नहीं थे, मैंने खुद ही उनको सुन करके, जिसमें नीचे वाला धड़ सुन हो जाता है, स्पाइनल एनेस्थीजिया कहते हैं, उनको मैंने सुन किया और सुन करके उनका मैंने ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन ठीक हो गया, उनकी ब्लीडिंग रुक गई, वो बेहतर हो गए। उसके बाद करीबन 6-7 माह ये होता रहा कि एक मरीज़ उठता था और एक बवासीर का और मरीज़ आ जाता था। उन्होंने जाके बताया कि जी वो एक मेरा ऑपरेशन हुआ और ठीक हुआ। उन्होंने किसी और मरीज़ को कहा, वो और आ गए। बहरहाल खैर वहाँ रहते हुए फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान होता है सिलेक्शन का, वो पास किया। उसमें ऐसा कुछ अजीब अल्लाह का करना हुआ कि 4000 लोग थे उस 87 में जब इम्तिहान दे रहे थे, तो उसमें मेरी तीसरी पोजीशन थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम मेरिट के हिसाब से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, जो कि सबसे मेरिट में ऊपर होता है, वहाँ आपको डेमोन्स्ट्रेटर लगा देते हैं। लेकिन वो चूँकि मुल्तान में से मैंने किया था और हमारा उस वक्त हमने वहाँ घर भी बना लिया था, तो मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया और वहाँ मैं डेमोन्स्ट्रेटर बन गया निश्तर मेडिकल कॉलेज में। वहाँ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में मैंने हमारा FCPS का Part 1 एग्ज़ाम होता है वो किया। उस वक्त रिक्वायरमेंट 2 साल थी सर्जन बनने की, और मैंने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 2 साल के अंदर ही FCPS कर लिया, यानी मैं सर्जिकल स्पेशलिस्ट बन गया। फिर एक मुझे ज़िंदगी में मौका मिला, और आई थिंक मेरा ख्याल है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे गोल्डन मौका था, कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला जिसके तहत मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अकेला ही इदारा है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, फेलोशिप, तो उसके तहत मुझे एक स्कॉलरशिप मिला ऑस्ट्रेलिया में। और स्कॉलरशिप भी मुझे एक ऐसे जगह पर मिला जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। वहाँ एक प्रोफेसर साहब हैं, DL मॉरिस, और बहुत सारे लोग जो कि पूरी दुनिया में सब उनको गुरु मानते हैं इस काम में। तो वो लिवर के, जिगर के अमराज के, कि जो जिगर की जो जराहत से मुतल्लिक सर्जिकल अमराज हैं, उसका वो हॉस्पिटल है, उसका शोभा जो है। तो वहाँ मैंने काम किया। वो जो ऑस्ट्रेलिया में मेरा पीरियड था, वो मेरा ख्याल है मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी का सबसे शानदार पीरियड था, क्योंकि वहाँ जाके मैंने वो तमाम चीज़ें सीखी जो उस ज़माने में यहाँ नहीं होती थी। मेरा ख्याल है मैं जब 94 में वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया, तो उस ज़माने में पाकिस्तान में शायद 1-2 जगह हों जहाँ लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट होती हो। गो अभी भी यहाँ हर अस्पताल में लिवर कैंसर की सर्जरी नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में तो बहुत ही कम लोग थे। आर्मी में एक जनरल साहब हैं, जनरल रफ़ी साहब, बहुत सीनियर उस्ताद हैं, वो करते थे, और शायद कराची में कोई करता हो। तो मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने वो लिवर कैंसर की का इलाज सीखा, और इसके अलावा जो दूसरी मेरी स्पेशलिटी है जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, अब तो आम लोग भी उसको जानते हैं। जैसे कि आपके इल्म में है कि जब हम पेट का ऑपरेशन करते हैं या जिस्म के और अंदरूनी अज़ा का ऑपरेशन करते हैं तो हमें उसे खोलना पड़ता है, चीरा देकर उसको काटना पड़ता है। लेकिन ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी वो टेक्निक है जिसमें पेट को खोलना नहीं पड़ता, बल्कि आप एक सुराख के ज़रिए एक कैमरा उसमें दाखिल कर देते हैं। तो जब आप कैमरा अंदर दाखिल करते हैं तो पेट का सारा निज़ाम अपने असली साइज़ से बड़ा लेकिन ओरिजिनल रियल टाइम आपको मॉनिटर पे नज़र आता है। अब आप बाहर से, जैसे आपने देखा होगा बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना कि हाथ में वो जॉयस्टिक लेके, तो जॉयस्टिक की तरह आप इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर से पकड़ते हैं, उनका कुछ कंट्रोल आपके पाँव में होता है, कुछ आपके हाथ में होता है, और उसके ज़रिए से आप वो जराहत का सारा अमल मुकम्मल करते हैं। इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। और मेरे ख्याल में सर्जरी में जितनी तब्दीली आई है और जितने इनकलाब आए हैं, गालबन ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे बड़ा इनकलाब है जिससे ऑपरेशन करने का पूरा स्टाइल चेंज हो गया है। और अब इस कदर हैरान कन बात है कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन और बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और पेचीदा सर्जरी जो जिसके लिए बहुत वक्त दरकार होता था और पेशेंट को कई कई दिन हस्पताल में रहना पड़ता था, वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से टेक्निक से इस तरीके से हो जाते हैं कि मरीज़ अगले दिन घर जा सकता है या बहुत ही कम वक्त में घर जा सकता है। और मैंने ये काम 1994 में शुरू किया, यानी ये पाकिस्तान में जो शुरू के लेप्रोस्कोपिक काम करने वाले हैं, मैं ये बात बड़े आजाना फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। चूँकि मुझे बहुत शौक था कि मैं सीख के आया उसको फटाफट करूँ, तो वो भी बड़ी मज़ेदार बात है। मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी थी FX, तो मैंने ये सोचा कि लेप्रोस्कोपी ज़्यादा अहम है या FX ज़्यादा अहम है, तो मैंने फ़ैसला किया कि लेप्रोस्कोपी ज़्यादा अहम है। मैंने वो गाड़ी बेच दी, इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी वो बेच दी, फिर भी पैसे पूरे ना हुए। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये सेकंड हैंड इक्विपमेंट लाहौर में एक साहब बेचते हैं, उनसे फिर उनसे मैंने पता किया। उन्हें मैंने कहा कि अगर मैं ये खरीदूँ तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आप मुझे किस्तों में दे दें? उन्होंने कहा कि हाँ। वो जो किस्तों में पैसे देने थे वो भी पूरे नहीं होते थे। फिर हमारे एक उस्ताद हैं मुल्तान के अंदर, प्रोफेसर इजाज़, मेडिसिन के प्रोफेसर हैं इजाज़ हुसैन मलिक साहब, तो वो उनके साथ मैंने हाउस जॉब की थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू करनी है। तो उन्होंने अपनी चेकबुक निकाली, साइन करके कहने लगे इस पे जितने पैसे तुम्हें चाहिए ले लो। मैंने कहा मुझे 200,000 चाहिए, मैं आपको 20,000 रुपये महीने के हिसाब से वापस करूँगा। वो कहने लगे तुम वापस कर दो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम वापस ना भी करो फिर भी बड़ी अच्छी बात है, तुम ले लो। तो इतने मोहब्बत करने वाले उस्ताद थे। तो खैर वो मैंने आके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का काम शुरू किया। फिर मेरा वहाँ से तबादला हो गया, यहाँ भावलपुर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना। तो भावलपुर में, तो बहरहाल मैं जब यहाँ आया तो आके मैंने सोचा कि यहाँ एक तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई नहीं करता और यहाँ ये लोग इससे मुतारिफ़ नहीं थे, तो मैंने कहीं से कर्जा वर्जा लेके यहाँ लेके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू की। और 1994 से लेकर अब तक मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ। जब हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और मैं जाके अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो शुरू में तो मैं ज़ाहिर है काउंट रखता था, अभी 1,000 ऑपरेशन कर लिए, 1,500 ऑपरेशन कर लिए। अब जब मैं बताता हूँ ना किसी को कि मैं 7,000 के करीब लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर चुका हूँ, तो अमूमन लोग इस बात को यकीन नहीं करते। तो इसलिए मैंने अब ये बताना छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैं 1994 से ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं ये बात बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि इस बात को उनको यकीन, वो समझते हैं कि शायद एग्जेजरेट करके और वो झूठ बता रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये इस सिलसिले में मैंने एक अपनी तरफ से जो एक कंट्रीब्यूट कर सकता था वो मैंने कंट्रीब्यूट किया। ना सिर्फ ये किया बल्कि मैंने और सर्जन ट्रेन करने पर भी तवज्जो दी। गो मुझे इस बात का इतराफ़ है कि कुछ सहूलियात की कमी की वजह से और कुछ इनिशिएटिव की कमी की वजह से जितने सर्जन मैं बना सकता था और वो नहीं मैं बना सका, लेकिन फिर भी एक खासी तादाद है जो कि मेरी ट्रेनी हैं और जो ट्रेन सर्जन बने, उनमें से कुछ जो हैं वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में उन्होंने महारत हासिल की। मेरे साथ सीनियर रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर आसिम, वो सऊदी अरब गए और जाके उन्होंने वहाँ ऑपरेशन किए। इसके अलावा एक और मेरे शागिर्द हैं जो दुबई में हैं, उन्होंने दुबई में अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, जावेद असलम उनका नाम है। तो तकरीबन 16-17 लोग हैं जो इस पीरियड के दौरान ट्रेनिंग लेकर सर्जन बने और कुछ उसमें से लेप्रोस्कोपिक सर्जन बने। लेकिन अब मैं अपने आप को इस पोजीशन में समझता हूँ कि इंशाल्लाह मैं अब इसको और ज़्यादा स्पीड से कर सकूँगा, ख़ासतौर पर सरकारी हस्पताल में जब ये सहूलत हमें मैसर हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो वो तमाम सर्जन जो हमारे पास ट्रेनिंग हासिल करते हैं वो इंशाल्लाह लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेनिंग हासिल करेंगे। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मसला नहीं हुआ, और मैं समझता हूँ कि मैं वो खुशकिस्मत शख्स हूँ कि जिस जगह पर लंबी लाइन लगी होती थी, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, और जब मैं पहुँचा तो उस वक्त दरवाज़ा खुल गया, और ज़िंदगी के तमाम मरहलों में अल्लाह ताला ने इतनी मदद की कि मेरे लिए मेरा प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ वो बहुत ही कम्फर्टेबल और बहुत ही अच्छी गुजरी। और मैं इसलिए मेरे जहन में ये पक्का था कि मुझे यहाँ आना है। अच्छा, थोड़ा सा अरसा बाहर रह के जब लोग यहाँ आते हैं तो मसाइल का के शिकार होते हैं। मसलन जब मैं यहाँ आया और आके मैंने तमाम दोस्तों को बताया कि भाई मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ, मुझे लिवर के कैंसर का ऑपरेशन करना चाहिए, तो लोगों ने कहा भाई ये तो बंदे मारना शुरू कर देगा। और जो एक प्रोफेशनल जेलेसी और एक तरह की खींचातानी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुल्तान में मैंने पहली दफ़ा जिगर के कैंसर का ऑपरेशन अरेंज किया, तो वहाँ ऑपरेशन करने के बाद हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने मेरी एक्सप्लेनेशन कॉल की, उन्होंने मुझे बुला के कहा कि तुमने ये किसकी इजाज़त से किया। मैंने कहा जी मैं एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड सर्जन हूँ, मुझे ये काम आता है, ये देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, और वो उन्होंने खाम खासे उसमें रोड़े। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। जब भी आप कोई नया काम, कोई बड़ा काम, इसमें सिर्फ घबराना इस बात से चाहिए कि कहीं आपकी नीयत में कहीं ख़राबी तो नहीं आ गई, कहीं आप ये नमूदो नुमाइश के लिए तो नहीं कर रहे, कहीं आप ये ऐसे ही अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए नहीं करते। आपको अगर किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो बस अपनी नीयत का ख्याल रखना है। अगर आप अपनी नीयत को संभाल लें और नेक नीयती से करें तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते खोलना शुरू कर देता है। जैसे वासिफ अली वासिफ ने ये फरमाया था कि जो कुछ आप जानते हैं उसमें किसी और को हिस्सेदार बनाना, बस यही इल्म है, और जो कुछ आप जानते हैं उसके जरिए से लोगों पर वहशत तारी करना, यही जहालत है। यानी आप ये तासुर दें कि ये तो मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता, और किसी को जानना भी नहीं चाहिए, इसी का नाम जहालत है, और ऐसे इल्म का कोई फायदा भी नहीं होता। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि मुझे इस सिलसिले में इतराफ है कि इसको मैं जितना चाहता था वैसे नहीं कर सका, लेकिन अब मैं एक यूनिट का इंचार्ज हूं, मेरा अपना एक रेजिडेंसी प्रोग्राम है, मेरे साथ बहुत सारे रजिस्ट्रार काम करते हैं और बड़े अच्छे लड़के और लड़कियां हैं, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये जो एक विजन और एक जो ख्वाब था मेरा, या एक मेरी जो सोच थी, इंशाल्लाह अब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में मैं ज़ाती तौर पर और मेरी टीम जो है वो इसमें इंशाल्लाह हिस्सा डालेगी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम बहुत सारे सर्जन प्रोड्यूस होंगे और ट्रेनिंग हासिल करेंगे, और वो इंशाल्लाह जब पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे तो इस सहूलत को आवाम तक पहुंचाएंगे। ये बात जो हमारे जहन में कहीं से घुस गई है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, और ये कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या खुदा ना खास्ता इस तरह के अल्फाज के पाकिस्तान टूट जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये इंतहाई गुमराह कुन बात है। और ये जो हमारे जहन में आ गया है ना कि जब तक हुकूमत ठीक नहीं होगी, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल ही एक अब गैर जिम्मेदाराना बात है। देखिए, सारा मुआशरा अफराद से मिलकर बनता है। मैंने ये बात काफ़ी रियाजत से, अगर आप कहें तो, ये सीखी है कि जब अगर फ़र्द ठीक हो जाएंगे तो निज़ाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और किसी भी फ़र्द को इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब तक हवा मुवाफिक नहीं आएगी उस वक्त तक मैं अपना सफ़र शुरू नहीं करूँगा। आपको अपना सफ़र शुरू करना है, चाहे सामने से तेज़ हवाएँ आती हों और हालात ना मुवाफिक हों, आपको अपना सफ़र शुरू करना है। और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि एक आदमी ने एक सफ़र किया और उस सफ़र के नतीजे में उसने पूरा का पूरा कारवान उसके साथ इकट्ठा हो गया। मैं इस बात पर बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ कि हम में से हर शख्स दिया बन सकता है, और दिए को बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाला दिया होने की ज़रूरत नहीं है। सख्त शदीद अंधेरे में और एक घटाटूप अंधेरे के अंदर एक दिया सलाई भी काफ़ी है पूरे के पूरे कमरे के अंदर अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए, और ये फ़र्क देखने के लिए कि ये सांप है या रस्सी है। तो इस लिहाज से मैं तो कम अज़ कम इस बात पर बड़ा पुरुमीद हूँ कि हम में से हर शख्स जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी है उसे अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने अपनी यूनिट के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हमारे एक डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर, जो कि थोड़ा सा कंप्यूटर से उनका शौक़ है और फोटोग्राफी से, तो हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ये बुनियादी तौर पर सर्जिकल टेक्निक्स हैं और लाइव ऑपरेशंस हैं जिनको हमने सीडीज की फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस किया, और ये मुझे मालूम नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तान में इस तरह का ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोजेक्ट पहले किसी ने नहीं किया। तो इसमें एक सीडी पे दो तीन ऑपरेशन जो एक ही तरह के अमराज के हैं उनको हमने रिकॉर्ड किया है और ये हम स्टूडेंट्स को देते हैं। और दूसरा ये कि ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। इस तरह की सीडीज़ अगर आप बाहर के मुल्कों की बनी हुई लें तो वो बहुत महंगी मिलती हैं क्योंकि ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हैं। हम इनको फ्री बनाते हैं, जस्ट इसको बना के और स्टूडेंट्स में मुफ्त तकसीम कर देते हैं। लेकिन जाहिर है मैं इस मामले में प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसा एवेन्यू जिसके ज़रिए से इस प्रोजेक्ट को हम ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से बना सकें और बना के इसको काम कर सकें। लेकिन ये है कि ये हमने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकला है। इसके अलावा मैंने सर्जरी की किताब भी लिखी है, इसका नाम ऑपरेटिव सर्जरी है। तो ये किताब जो है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और ये यहाँ बहावलपुर में और लाहौर में और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बहुत पॉपुलर है, उसको स्टूडेंट खूब पढ़ते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अब जबकि मैं एक यूनिट को हेड करता हूँ, शायद मैं अब ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूँगा कि मैं एक पूरी टीम बनाकर इस किस्म का जो लिटरेरी, जो मेडिकल प्रोफेशनल लिटरेरी काम है, उसको मैं और अच्छे तरीके से कर सकूँगा। क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिकेशन की बहुत कमी है। अगर आप एक इंटरनेशनल जर्नल उठा के देखें तो आपको कभी शाज़ो नाज़र कोई पाकिस्तानी ऑथर का आर्टिकल किसी इंटरनेशनल रिप्यूटेड जर्नल के अंदर मिलेगा। तो एक ये वो एरिया है जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बेहतर भी कर सकते हैं और इल्म की खिदमत भी कर सकते हैं। मैं शेर भी कहता हूँ और मुझे याद नहीं मैं कब से शेर कहता हूँ। मैं शायद 10वीं जमात में पढ़ता था जब मैंने बाकायदा एक गज़ल लोगों को सुनाई थी और उस अपनी सारी शायरी को मैंने 1997 में एक किताब की शक्ल में भी दिया। तो ये किताब आई है 1997 में, इसका नाम है किसी को कुछ भी खबर नहीं है। और वाकई मैं समझता हूँ किसी को कुछ भी खबर नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम ये रखा है। और एक और किताब मेरी वो कंपोज हो चुकी है, उसका नाम है ज़ोम ला हासिल, तो वो इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में आ जाएगी। तो ये बात भी उमूमन लोगों को बड़ी हैरत में डालती है कि एक शख्स जिसका ताल्लुक स्केल्पल से हो और पेट को कचीरा देने से और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से और कैंसर के मरीजों से हो, तो उसका शायरी से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। ये गज़ल के चंद अशआर हैं कि वही दिन रात है और कुछ नहीं है, वही दिन रात है और कुछ नहीं है, गुजर औकात है और कुछ नहीं है। कभी हम साथ होते थे मगर अब निरी बरसात है और कुछ नहीं है। वगरना यूं तो मैं अच्छा भला हूं, वगरना यूं तो मैं अच्छा भला हूं, गमे हालात है और कुछ नहीं है। और मेरी झोली में जो तूने अता की वही खैरात है और कुछ नहीं है, जो दिखता है नजर का वाहिमा है, जो दिखता है नज़र का वाहिमा है, खुदा की ज़ात है और कुछ नहीं। और इसी तरह एक नज़्म है कि मेरे ऊपर ज़माने ने हज़ारों खौफ के साए मुसल्लत कर दिए थे, मेरी सोचों के सब तिशना प्याले अकायद और मसाइल की मय बेज़ायका से भर दिए थे, मेरे ऊपर बहुत से दूसरों की ज़िद बसूरत गर्द के छाई हुई थी, अना के आतिशी मलबूस में लिपटी हुई ख्वाहिश मेरे आंगन में भी आई हुई थी, मुझे एक ज़ोम ला हासिल ने उलझाया हुआ था, गुरूर आगही ने मंजिले बेसूद का रास्ता भी दिखलाया हुआ था, मगर खामोशियों की झील से उम्मीद का नीला कमल अब खिल रहा है, कहीं पाताल से कुछ रोशनी सी आ रही है, तसव्वुर पर पड़ी ये गर्द भी कुछ धुल रही है और अपने कुछ ना होने की हकीकत खुल रही है। मैं अपने आप पर लिपटे हुए पर्दे हटाता जा रहा हूं, मैं अपनी जात की वादी में एक रास्ता बनाता जा रहा हूं। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन लोगों के बारे में भी जिक्र करूँ जो मेरी ज़िंदगी में अहम हैं। उसमें सबसे अहम मेरे वालदैन हैं। मेरी वालदा का इंतकाल पिछले साल हुआ और ज़ाहिर है इस बात का मुझे बहुत दुख है, और मैं जब भी घर में दाखिल होता हूँ तो मुझे फ़ौरन एहसास होता है कि कोई अब घर में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी उनकी तरफ से मुतमईन हूँ, और मैं सोचता हूँ कि मैं, मेरी उम्र अब 46 साल है, तो जब उनका इंतकाल हुआ मेरी उम्र 45 साल थी, तो ये कितनी खुशकिस्मती की बात है कि हम 45 साल इकट्ठे रहे। और जब उनके दुनिया से जाने का टाइम आया तो वो एक ऑनर के साथ और डिग्निटी के साथ इस दुनिया से चली गई। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के साथ मौत भी एक बरहक हकीकत है, और हमें जहाँ ज़िंदगी को का इस्तकबाल करना चाहिए और उसकी पज़ीराई करनी चाहिए, वैसे हमें मौत को भी उसी पज़ीराई और उसी ऑनर और डिग्निटी के साथ हमें मिलना चाहिए। और चूंकि हमारे डॉक्टर होने की हैसियत से मौत से हमारा रोज़ाना वास्ता पड़ता रहता है, मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक खूबसूरत तजुर्बा होगा। और उसके बाद जो, और कम अज़ कम मौत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बहुत से अन आंसर्ड क्वेश्चंस, उनका हमें जवाब मिल जाएगा। तो मैं ज़िंदगी और मौत के बारे में इस तरीके से सोचता हूँ। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरा इस दुनिया में अगर कोई सबसे गहरा दोस्त है तो मेरे वालिद साहब हैं, और मैंने ज़िंदगी में जो भी अचीव किया है उसमें हमेशा उनकी बरकत शामिल रही है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो वो काम जो आप दोस्तों से सीखते हैं, वो मैंने हमेशा अपने वालिद साहब से सीखे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने मुझे ताश खेलना सिखाया, उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया, हम इकट्ठे पहली दफ़ा फिल्म देखने गए, वगैरह वगैरह। मेरे चार बच्चे हैं और चारों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, अहमद, उमर, रिदा और मोहम्मद। और मेरी बेगम जो हैं, कौसर उनका नाम है, और वो भी बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून हैं, और मैं उनका एहसान मंद हूँ। ख़ास तौर पर मेरी वालदा की बीमारी के दिनों में जिस तरीके से मेरी बेगम ने मेरी वालदा की खिदमत की, वो एक ऐसा एहसान है जो मैं कभी भी नहीं उतार सकता। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ज़िंदगी को, कि हर तरह का इत्मीनान मुझे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में दिया हुआ है।